नमस्कार भारत, आज है 3 सितंबर, दिन शनिवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव का 78 साल की उम्र में निधन, 27 साल तक संभाली देश की कमान। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में जारी तनाव के बीच रविवार को एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल करेगा राज्य का दौरा, उससे पहले केंद्र ने सभी नेताओं की बुलाई बैठक।
कोशिश होगी कि आम राय बन जाए कि कश्मीर के सवाल को हल करने के लिए किन किन से बात करना है। मेन स्ट्रीम के साथ तो बात होते ही हो रही है।
चीन में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वियतनाम।
चीन ऐसा बहुत करता आया है, जब भारत की यात्रा चीन का कोई नेता करता है तो पाकिस्तान होते हुए आता, लेकिन मुझे इससे ये पहलू नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को वियतनाम जाना ही था।
होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव की मौत के बाद उज्बेकिस्तान में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति करीमोव 78 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार आज समरकंद में होगा, जहां वो पले बड़े थे। करीमोव ने 27 साल तक पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे उज्बेकिस्तान पर शासन किया। ये आवाज़ें फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे के गृहनगर डवाओ से हैं, जहां हुए एक बम धमाके में कम 12 लोग मारे गए हैं और 30 से अधिक घायल हुए हैं। धमाका डवाओ के एक व्यस्त रात्रि बाजार में हुआ है। राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता का कहना है कि ऐसा लगता है कि धमाका IED से किया गया है। डवाओ फिलीपींस के दक्षिणी इलाके मिंडानाओ में है, जहाँ इस्लामी चरमपंथी और हथियारबंद वामपंथी विद्रोही गुट सक्रिय हैं। जिस समय धमाका हुआ, राष्ट्रपति डुटर्टे भी शहर में मौजूद थे। वे राष्ट्रपति बनने से पहले 20 साल तक इस शहर के मेयर रहे हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अकार्दी वोरकोविच ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले से यूरोप कमजोर हुआ है। BBC को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जून में हुए जनमत संग्रह ने अनिश्चितताओं को जन्म दिया है। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया कि रूस ब्रिटेन के अलग होने के फैसले का समर्थन कर रहा था, क्योंकि वह यूरोपीय संघ की एकता को कमजोर करना चाहता था। उप प्रधानमंत्री वोरकोविच ने कहा, रूस के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यूरोप मजबूत हो। हमें कमजोर सहयोगियों की जरूरत नहीं है, हमें मजबूत सहयोगियों की जरूरत है, ताकि हम रूस और यूरोप के लोगों को बेहतर भविष्य दे सकें। ब्रिटेन के यूरोप से अलग होने के फैसले ने यूरोप को कुछ कमजोर कर दिया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड के एक बिशप ने कहा है कि वो एक समलैंगिक रिश्ते में है। ग्रांथम के बिशप निकोलस चैम्बरलेन सार्वजनिक रूप से अपने समलैंगिक होने की जानकारी देने वाले पहले बिशप हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति से जुड़े सभी लोगों को उनके समलैंगिक होने के बारे में जानकारी थी। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI ने हिलेरी क्लिंटन के विदेश मंत्री रहते हुए निजी ईमेल सर्वरों के इस्तेमाल की जाँच से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि उन्हें कभी इस बात का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था कि गुप्त दस्तावेजों को किस तरह रखना है। जांच में कहा गया है कि क्लिंटन लापरवाह थीं, हालांकि उन पर आपराधिक मामला चलाए जाने की संस्तुति नहीं की गई है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव का निधन हो गया है। वो 78 वर्ष के थे। मस्तिष्क आघात होने के बाद 6 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और अब उनके निधन की पुष्टि कर दी गई है। उन्होंने 27 साल पहले उज्बेकिस्तान की सत्ता संभाली थी और आज़ाद देश बनने के बाद से अब तक राष्ट्रपति पद पर बने हुए थे। एक ब्यौरे के साथ दिलनवाज पाशा।
शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के सरकारी TV पर राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव की मौत की घोषणा कर दी गई।
Здравствуйте. Сообщение о Мажлисе Республики Узбекистан.
उद्घोषक कह रहे हैं, प्यारे देशवासियों, अपने दिल में गहरे शोक के साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे प्यारे राष्ट्रपति इस्लाम अब्दुल गनीयेविच करीमोव का निधन हो गया है। उनका निधन ताशकंद शहर में 2 सितंबर को हुआ। टीवी पर इस ऐलान के साथ ही उज़्बेकिस्तान की सत्ता पर बीते 27 साल से काबिज ताकतवर नेता इस्लाम करीमोव की मौत की पुष्टि भी हो गई। 78 वर्षीय इस्लाम करीमोव एशिया के सबसे ताकतवर और सत्तावादी नेताओं में शामिल थे। उज़्बेकिस्तान के सरकारी टीवी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार शनिवार को उनके गृह नगर समरकंद में किया जाएगा। इस्लाम करीमोव समरकंद के ही एक अनाथालय में बड़े हुए थे। उन्हें ब्रेन हैमरेज होने के बाद 6 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से ही उनकी सेहत को लेकर संशय था। सरकारी टीवी पर उनकी मौत की पुष्टि से पहले ही कई विदेशी राजनयिक और नेता उनकी मौत होने के संकेत दे चुके थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके शासन के दौरान उत्पीड़न का संस्थागत इस्तेमाल किया गया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि राष्ट्रपति करीमोव एक दमनकार सत्ता चलाने वाले नेता थे। पेरिस में रह रही विपक्ष की एक कार्यकर्ता और ब्लॉगर नादेजदा अतायेवा का कहना है कि करीमोव ने अपने किए के लिए न्याय का सामना नहीं किया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने शासनकाल में हुए अपराधों पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने पीछे एक डरावनी विरासत छोड़ी है। उन्हें बाद सत्ता संभालने वाले लोग भी उन्हीं की नीतियों पर चलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये ही सबसे कड़वी बात है जो हमें बर्दाश्त करनी होगी। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में याद किया है जिन्होंने मध्य एशिया की स्थिरता में योगदान दिया। उज़्बेकिस्तान के अधिकारियों ने राष्ट्रपति करीमोव के निधन पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। इस्लाम करीमोव के निधन के बाद उज़्बेकिस्तान ने अपना पहला और एकमात्र राष्ट्रपति खो दिया है। इस्लाम करीमोव ने उज़्बेकिस्तान को सोवियत संघ से टूटकर एक स्वतंत्र देश बनता देखा था। हालांकि उनका 2 दशक से भी ज्यादा लंबा शासनकाल दमन और चुनाव में धांधलियों के आरोपों से भी घिरा रहा, लेकिन कुछ नेता उन्हें आधुनिक उज़्बेकिस्तान का निर्माता भी मानते हैं। वैभव श्रीवास्तव इस्लाम करीमोव की शख्सियत पर रोशनी डाल रहे हैं।
इस्लाम करीमोव उज़्बेकिस्तान में एक पूरी पीढ़ी से भी ज्यादा के लोगों के लिए सबसे ताकतवर और प्रभावशाली नेता रहे। उन्होंने मध्य एशिया के इस महत्वपूर्ण देश उज़्बेकिस्तान का निर्माण किया। इस्लाम करीमोव एक गरीब घर में पैदा हुए थे उस वक्त जब सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर था। सोवियत संघ के आखिरी सालों में इस्लाम करीमोव एक बड़े नेता के रूप में उभरे। जब पहले वो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव बने और फिर आजाद उज़्बेकिस्तान के पहले और अब तक के अकेले राष्ट्रपति। उन्होंने उज़्बेकिस्तान पर शासन करने के लिए पहले से इस्तेमाल होते आए तरीकों का ही प्रयोग किया। हर जगह फैले हुए जासूस, बनावटी मीडिया और ऐसे चुनाव जिनमें विपक्षी उम्मीदवार भी उन्हीं के नाम पर वोट डालते थे। अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए जेलों से कई बार उत्पीड़न की विश्वसनीय खबरें आईं। उनके शासन में कभी कोई नई राजनैतिक सोच उभर नहीं पाई।
इस्लामी पूर्व है, पश्चिम के जैसा सिर्फ पश्चिम ही है और अमरीका जैसा सिर्फ अमरीका। इसी मद्देनजर मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र हर जगह नहीं हो सकता। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, ये बात सच है कि लोकतंत्र के कई आदर्श सही हैं, पर लोकतंत्र एक प्रणाली के रूप में हर जगह के लिए सही नहीं है।
इस्लाम करीमोव का शासन करने का ढंग उस वक्त बाहरी दुनिया से विवाद में आया जब 2005 में उज़्बेक सेना ने आंदीजान शहर में प्रदर्शन कर रहे 2100 लोगों को मार दिया। करीमोव ने सभी आलोचनाओं को गलत बताते हुए यही कहा कि मरने वाले सभी लोग खतरनाक चरमपंथी थे।
मेरा खुद का और हमारी सरकार का यही सोचना है कि आंदीजान में हुई घटना की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन का गठन करना बेबुनियाद है और हम इस बात को कभी नहीं मानेंगे।
इस्लाम करीमोव के शब्द। अपने इतने लंबे शासन के दौरान उन्होंने कई बार अपने तरीकों को बदला। वो सवेराम रूस के विरोध में रहे और आमतौर पर अमरीका के समर्थन में। उन्होंने जहां एक ओर उज़्बेकिस्तान को अपने इलाके के एक अहम देश के रूप में उभारा, वहीं दूसरी ओर अपने पड़ोसी देशों के प्रति शत्रुता रखी। वो हज यात्रा पर गए, पर इसके बावजूद उन्होंने कई मस्जिदों को बंद करवाया। उन्होंने एक काल्पनिक इतिहास पर राष्ट्रीय सम्मान को भी बढ़ावा दिया। अगर किसी ने उज़्बेकिस्तान को देख लिया है तो मान लीजिए कि उसने पूर्व को देख लिया है, अब उसे उत्तर, पश्चिम और दक्षिण को देखने जाना चाहिए। ये था उज़्बेकिस्तान की तारीफ करता एक विज्ञापन। हालिया सालों में इस्लाम कारिमोव आम जनता के बीच कम ही नजर आते थे, उनका प्रभाव भी कम होने लगा था। कई बार हुए विवादों की वजह से उनके परिवार का नाम सामने आया और उनकी बड़ी बेटी गुलनारा, जो एक वक्त पर मध्य एशिया के सबसे ताकतवर नेताओं में देखी जाती थीं, भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उनकी भी छवि खराब हुई। लाखों उज़्बेक नागरिक इस्लाम कारिमोव को अपने देश का एक समझदार और रक्षा करने वाले नेता के रूप में देखते हैं। बाहरी दुनिया से बहुत ही कम संपर्क रखने वाले इस नेता के बिना उज़्बेकिस्तान की कल्पना करना आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं।
इस्लाम करीमों की शख्सियत और उनके शासनकाल के बारे में बता रहे थे वैभव श्रीवास्तव।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में हालात वैसे तो सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को कश्मीर घाटी के कई इलाकों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के 57 दिन बाद भी कश्मीर घाटी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच राज्य के हालात का जायजा लेने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल वहां जाने वाला है। उसी संबंध में केंद्र सरकार ने आज एक बैठक बुलाई है, जिसमें प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट के साथ अशोक कुमार।
भारत प्रशासित कश्मीर घाटी में करीब 56 दिन से जारी अशांति की स्थिति के बीच कल एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा। केंद्र सरकार ने आज सुबह 11 बजे प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं की बैठक बुलाई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव कहते हैं कि कश्मीर में सभी पक्षों से बातचीत होनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि कश्मीर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में सरकार और विपक्ष की एक राय होनी चाहिए। शरद यादव ने बीबीसी से कहा,
हमारी कोशिश होगी कि आम राय बन जाए कि कश्मीर के सवाल को हल करने के लिए किन किन से बात करना है। मेन स्ट्रीम के साथ तो बात होते ही हो रही है, और बाकी जो बाहर पेरिफेरी में जिनसे बातचीत होते रहे उनके साथ जो जैसे हुर्रियत है उनके बारे में सरकार, भारत सरकार का क्या एटीट्यूड है। हालांकि वो मना कर रहा है कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग तो कश्मीर के सवाल को हल करने के लिए किसी से बात करने को तैयार हैं।
कश्मीर घाटी में बीती 8 जुलाई को चरमपंथी बुरहान वानी की एक मुठभेड़ में हुई मौत के बाद से अशांति की स्थिति है। अलगाववादियों की हड़ताल लगातार जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की अपील और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के 2 बार घाटी दौरे के बाद भी स्थिति बेहतर होती नहीं दिख रही है। कश्मीर जा रहे प्रतिनिधि मंडल में शामिल एनसीपी नेता तारिक अनवर कहते हैं कि सिर्फ सभी दलों के नेताओं के दौरे से हालात में बदलाव आने की उम्मीद लगाना बेमानी होगा, लेकिन इससे चीजें बेहतर दिशा में बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा,
बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वहाँ का माहौल है वो बहुत ही बद से बदतर हो चुका है, तो एक डेलीगेशन के जाने से फौरन हालात बदल जाएंगे मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, तो बातचीत का एक रास्ता खुलता है। जिस तरह से 2010 में इसी प्रकार से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो उसका लाभ हम लोगों को मिला था कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी हमको उसका लाभ मिलेगा। कम से कम हम ये कह सकेंगे कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वहाँ शांति व्यवस्था बनाने।
कश्मीर में प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारियों और प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए इस्तेमाल होने वाली पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी नाराजगी है। इस मुद्दे पर शरद यादव कहते हैं,
मैं शुरू से बोलते रहा हूँ कि पैलेट गन के बारे में भारत सरकार को इसको वापस करना चाहिए।
प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेताओं का कहना है कि वो सरकार के सामने अपनी राय और सुझाव रखेंगे, वहीं सरकार का पक्ष भी जानेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल में कुल 28 सदस्य है। इनमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, शिवसेना, अकाली दल, बीजेडी और एआईएमआईएम के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे अशोक कुमार।
बीबीसी इंडिया बोल।
मजदूर संगठनों का दावा, बढ़ती महंगाई के आगे कुछ भी नहीं है, न्यूनतम मजदूरी में 40% का इजाफा। सरकार का दावा, मजदूरों की जायज मांगों पर हो रहा है विचार। निजीकरण और सुधारों का लागू करना वक्त की मजबूरी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस वक्त हड़ताल का नुकसान झेलने की स्थिति में है? इंडिया बोल में इस बार इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3 सितंबर शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में 4 और 5 सितंबर को होने वाली G20 बैठक से पहले वियतनाम पहुंचे हैं। यहां आज उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नुयेन सुअन फूक से होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम रवाना होने से पहले ट्विटर पर लिखा कि उनका दौरा भारत और वियतनाम के करीबी संबंधों को और मजबूती देगा। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने ICWA के फेलो और दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के जानकार राहुल मिश्र से बात की और सबसे पहले पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन से ठीक पहले उसके विरोधी वियतनाम के दौरे पर पहुंचे हैं, ये क्या संकेत करता है?
देखिए, बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं कि भारत पहली बार ऐसा कर रहा है कि चीन जाने से पहले उसके, जिसे कहते हैं कि हम उसके राइवल देश के यहाँ जा रहा है। चीन ऐसा बहुत बार करता आया है, जब भारत की यात्रा चीन का कोई नेता करता है तो पाकिस्तान होते हुए आता है, लेकिन मुझे इसमें ये पहलू नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को वियतनाम जाना ही था। उन्हें लाओस की जो ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग है और भारत आसियान शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेना था, लेकिन बीच में क्योंकि ये G20 की मीटिंग आ गई तो मुझे लगता है उसे एकोमोडेट करने के लिए ये प्रयास है। लेकिन इसमें ये पहलू भी है तो ये एक अच्छा सामरिक संकेत भारत देना चाह रहा है।
वियतनाम के साथ जहां तक सहयोग की बात है, वो किन चीजों में सहयोग हो सकता है?
देखिए, वियतनाम दशकों से भारत का बहुत ही बड़ा सैन्य और सामरिक सहयोगी रहा है। दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध के जमाने में, जब सोवियत यूनियन था तब से लेकर के और अभी तक सैन्य मामलों में भारत बहुत सहयोग करता रहा है वियतनाम को। इसके अलावा जब पिछली बार वियतनाम के नेता आए थे तो हमने एक $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, जिसका मुख्य मकसद ये था कि वहां पे हम जो है $100 मिलियन के सैन्य उपकरण वियतनाम को देंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसके बारे में भी बातचीत हो रही है, लेकिन इन सब से परे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पे भारत और वियतनाम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो है एक सामान्य ट्रेड और आर्थिक संबंधों का। भारत और वियतनाम के बीच में अभी $7.83 बिलियन का ट्रेड है, जो कि बहुत कम है अगर हम इसे सिंगापुर से या इंडोनेशिया से या मलेशिया से तुलना करें तो बहुत ही कम है। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें भारत और वियतनाम साथ साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज है, उनमें भारत और वियतनाम को बहुत कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के नेता और लीडरशिप ये इन चीजों को समझती है, जैसे कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दोनों देशों के बीच में, क्योंकि भाषा आड़े आ रही है। इतना सब कुछ सामंजस्य होने के बावजूद कमोबेश वैसी स्थिति है जैसी भारत और रूस के बीच में। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को समझते हैं, दोनों देशों की ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे को समझती है, लेकिन लोग दिलों के जुड़ने के बावजूद आपस में जुड़ नहीं पाते। यही चीज भारत और वियतनाम के बीच में भी मुझे लगता है नजर आ रही है।
भारत और चीन का जो संबंध है उसमें कई ऐसे मोड़ आए हैं इधर हाल के दिनों में, चाहे वो ग्वादर परियोजना हो, चाहे वो NSG का मामला हो। क्या आपको लगता है कि इस दौरे का कुछ असर इन सब चीजों पर भी कुछ हो सकता है?
देखिए, राजनय एक ऐसी चीज है जिसमें हम हमेशा ये मानते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं। G20 की जो मीटिंग हो रही है उसमें भी ये माना जा रहा है कि साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से बातचीत करेंगे कि NSG में भारत को एंट्री मिले, लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा ये जो टर्न अराउंड होने की पॉसिबिलिटी है ये फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है।
ये थे दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के जानकार राहुल मिश्र और उनसे बात कर रहे थे निखिल रंजन। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के बहुचर्चित आदर्श हाउसिंग घोटाला मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को फटकार लगाते हुए उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट खारिज कर दी है। अदालत ने CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर को भी 28 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। मुंबई से हमारे सहयोगी अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
मुंबई में कुलाबा में स्थित 31 मंजिला आलिशान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत आज भ्रष्टाचार की मिसाल बनी है। आरोप है कि पिछले कुछ सालों में राजनेता, सरकारी तथा सेना के अधिकारियों ने मिलीभगत से कई नियमों का उल्लंघन कर इस इमारत में घर हासिल किए। नवंबर 2010 में उजागर होने के बाद इस घोटाले की वजह से महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। वर्ष 2011 में CAG रिपोर्ट में यह कहा गया था कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला इस बात का उदाहरण है कि कैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त अधिकारी अपने निजी फायदे के लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद जनवरी 2011 में महाराष्ट्र सरकार ने 2 सदस्यों वाला एक कमीशन नियुक्त कर इस घोटाले की जांच शुरू कर दी। 2 साल तक छानबीन करने तथा 182 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद इस कमीशन ने अप्रैल 2013 में अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस इमारत में 25 घर अवैध रूप से आवंटित किए गए थे, जिसमें 22 घर बेनामी खरीदारों के नाम दर्ज थे। इस जांच रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे तथा राजस्व मंत्री शिवाजीराव निलंगेकर को दोषी पाया गया। इस घोटाले के खिलाफ ठाणे निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर ने एक जनहित याचिका दायर की।
तो मेन बात यह है, अगर ये जमीन ही अलॉट नहीं होती इलीगली तो ना घोटाला होता और ना स्कैम होता जैसे हम जानते हैं। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ऐसे निलंगेकर पाटिल और सुशील कुमार शिंदे जी को आरोपी होना चाहिए। ये मैंने बात रखी थी, जो मैं 4 साल से बात रख रहा हूँ। जो ब्यूरोक्रेट्स और जो मिनिस्टर्स ने ये लैंड एलोकेट किया है आदर्श सोसाइटी को, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो होनी चाहिए।
ये थे प्रवीण वाटेगावकर। फिलहाल इस मामले की जांच CBI, आयकर विभाग तथा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बॉम्बे हाईकोर्ट की देखरेख में कर रहे हैं।
और वक्त है आज अखबारों की समीक्षा का। मैं दिलनवाज पाशा को देख सकता हूँ, तमाम अखबार उन्होंने फैला दिए हैं और गौर से एक ही तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। क्या है खबर
जी अमरेश? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने जो बातें कही हैं अलग अलग अखबारों में अलग अलग शीर्षकों के साथ हैं। दैनिक जागरण लिखता है, मोदी का दलित समर्थक होना पचा नहीं पा रहे हैं लोग प्रधानमंत्री। अमर उजाला लिखता है, यूपी में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, मोदी। एक सहारा के जो प्रमुख हैं सुब्रत राय सहारा, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई कल और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी रोचक टिप्पणी करते हुए उनके वकीलों से पूछा, आपके पास पैसे आए कहां से? स्वर्ग से तो बरसे नहीं होंगे, हजम कर पाना मुश्किल है, सोर्स बताइए। ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत राय सहारा के वकीलों ने तर्क दिया कि उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटा दिए हैं। एक और खबर जो आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने में है वो है, लंदन ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त पहलवान, उनसे जुड़ी खबर है। ये पहली बार हुआ है कि किसी ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट दोनों डोपिंग में फंस गए हैं और अब उम्मीद जगी है कि गोल्ड मेडल 4 साल बाद योगेश्वर दत्त को मिल जाएगा। तो ऐसी खबर ये
मिल सकता है जी,
मिल सकता है बिल्कुल अलग अलग अखबारों में। एक और अहम सुनवाई थी कल सुप्रीम कोर्ट में, मुस्लिम महिलाओं को जो 3 बार तलाक कह के शादी से अलग कर दिया जाता है, शादी टूट जाती है, उससे जुड़ी हुई सुनवाई थी जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना तर्क रखा और इससे जुड़ी हुई खबरें अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर शीर्षक है। एक तर्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि महिलाओं को मारने से अच्छा है तलाक दे दिया जाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। गजनी और हॉलीडे जैसी फिल्में बनाने वाले निर्देशक AR मुरुगदॉस की तीसरी हिंदी फिल्म अकीरा रिलीज हो गई है। सुनिए फिल्म की समीक्षा स्वाति बख्शी और अर्णव बैनर्जी से।
PBC. अकीरा, आज तेरा भाई आ रहा है मुंबई से, वो मुझे मुंबई बुला रहा है, मतलब तुमको और मुझे।
मैं कहीं नहीं जाने वाली।
मुंह फोड़ दे साली का।
प्लीज माफ कर दो, ऑलरेडी मेरे कॉलेज के 3 साल बर्बाद हो चुके हैं, अब अगर तुम लोगों को भी मारूंगी तो फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी।
अर्णव, सोनाक्षी सिन्हा बहुत ही अलग अवतार में अकीरा में नजर आ रही हैं और उनका जो प्रमोशन हुआ है फिल्म का, उनकी इमेज का, वो भी बहुत ही धुआंधार किया गया है। तो क्या बॉक्स ऑफिस की लड़ाई जीतने का दम है अकीरा में?
देखिए, अकीरा की जो कहानी है बहुत सशक्त, बहुत अच्छी मज़ेदार कहानी है। एक थ्रिलर है, एज ऑफ द सी थ्रिलर है और यहाँ पे एक लड़की है जो जोधपुर में रहती है, छोटी है, अपने माँ बाप के साथ, और वो कोई अन्याय देख नहीं सकती है। अच्छा। कुछ लड़कियों पे अटैक करते हैं, एसिड फेंक देते हैं, तो वो बदला लेती है। बचपन से वो ऐसी है कि उसके पिताजी ने डांस क्लासेस की बजाय उसको मार्शल आर्ट्स क्लास में डाल दिया और उसके बाद उसकी जो पर्सनालिटी उभर के आती है वो क्वाइट है, मतलब चुप रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज तरार कुछ बोलने वाली लड़की है, लेकिन वो अत्याचार से ज़रूर लड़ने वाली लड़की है। तो उस हिसाब से एक बहुत ही अलग इमेज दिखाने की कोशिश की है सोनाक्षी सिन्हा ने अपने आप को, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं।
I'm not afraid to die.
पुरानी फिल्में हैं अगर हम उनके बारे में देखें, दबंग हो गई, आर राजकुमार हो गई, वो जिस तरह के रोल अब तक करती आई हैं,
वो तो एक बहुत ही घिसे पिटे और बहुत ही एक साधारण लड़की के रोल थे और उन फिल्मों के लायक वो ठीक थी। एक ही फिल्म में उन्होंने लुटेरे में कुछ अच्छा अभिनय किया था, उसमें कुछ परफॉर्मेंस करने की गुंजाइश भी थी। यहाँ पे एक्शन है और यहाँ पे जैसे मैंने कहा वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो लड़ने वरने वाली लड़की है ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ उठाती हैं, जोर जोर से बोलती हैं, और थ्रिलर को ऐसा ही होना चाहिए।
तो सोनाक्षी सिन्हा के करियर को आपको लगता है इससे कोई बूस्ट मिलने वाला?
देखिए, बूस्ट तो मिलना चाहिए क्योंकि बहुत कम हीरोइंस हैं जो अर्ली स्टेज पर एक इमेज को चेंज करने की कोशिश करती हैं। करिश्मा, करीना इससे पहले वो कर चुकी हैं लेकिन उन्होंने बहुत बाद में किया है। एक अर्ली अपने करियर में एक इस तरह का रोल करना मेरे ख्याल से एक काबिले तारीफ है।
कितने सितारे देंगे आप?
मुझे थ्रिलर के हिसाब से बहुत अच्छी लगी, हालांकि सेकंड हाफ बहुत डूब जाता है, बहुत ही स्टीरियोटिपिकल कुछ कैरेक्टर्स और कुछ सिचुएशंस देने की वजह से फिल्म सेकंड हाफ में बिल्कुल उतर जाती है, इसलिए मैं इसको 5 में से 3 दूंगा।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमरीकी ओपन में पुरुष एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे का सामना तीसरे दौर में गैर वरीयता हासिल इटली के पाउलो लोरेंजी से होगा। इससे पहले एंडी मरे ने स्पेन के मार्सिल ग्रानुलर्स को थोड़े संघर्ष के बाद 6-4, 6-1, 6-4 से मात दी थी। 22वीं वरीयता वाले बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव पुर्तगाल के जाओ सोसा से, छठी वरीयता हासिल जापान के केई निशिकोरी का सामना फ्रांस के निकोलस माहुत से, 21वीं वरीयता हासिल क्रोएशिया के इवो कार्लोविच का सामना क्वालिफायर अमरीका के जेरेड डोनाल्डसन से, और तीसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका का सामना ब्रिटेन के डेनियल इवांस से होगा। वहीं महिला एकल वर्ग में भी तीसरे दौर में शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स स्वीडन की योहाना लार्सन से टकराएंगी, जबकि 5वीं वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालिप, 31वीं वरीयता हासिल हंगरी की टिमिया बाबोस और 6ठी वरीयता हासिल अमेरिका की वीनस विलियम्स 26वीं वरीयता हासिल जर्मनी की लॉरा सिगेमंड का सामना करेंगी। उधर भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि वो भारत में आने वाले समय में खेले जाने वाले 13 टेस्ट मैचों के व्यस्त घरेलू दौरे में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन उनका मानना है कि वो काफी आगे की नहीं सोचते क्योंकि उससे उनकी मानसिकता प्रभावित हो सकती है। फिलहाल उनका ध्यान न्यूजीलैंड से होने वाली घरेलू श्रृंखला पर है। उल्लेखनीय कि न्यूजीलैंड की टीम इसी महीने भारत आएगी, जो भारत में 3 टेस्ट मैच और 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच इसी महीने 22 से 26 सितंबर तक कानपुर में खेला जाएगा।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव की मौत के बाद उज़्बेकिस्तान में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे के गृहनगर डावाओ में हुए एक बम धमाके में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और 30 से ज़्यादा घायल हुए हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अकार्दी वोर्कोविच ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले से यूरोप कमज़ोर हुआ है। चर्च ऑफ इंग्लैंड के एक बिशप ने कहा है कि वो एक समलैंगिक रिश्ते में हैं। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI ने हिलेरी क्लिंटन के विदेश मंत्री रहते हुए निजी ईमेल सर्वरों के इस्तेमाल की जांच से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मैनुअल सांटोस ने विद्रोही गुट फाक के साथ 50 सालों से चले आ रहे संघर्ष की समाप्ति के औपचारिक समारोह की तिथि का ऐलान कर दिया है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।